कोई किसी का सगा नहीं होता, फैजान ने कहा और साथ ही उसने नूर के पैरों की तरफ देखा। वो नूर अरमान के साथ यूनिवर्सिटी से आई थी और उसके पैरों पर फिर समंदर की रेत लगी हुई थी। उन्होंने भी अपने पैर पीछे किए थे। आपको यकीन की कदर करनी चाहिए जो आपके अब्बा ने आप पर किया है। इधर उधर घूमने की जगह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वो नूर से बोला। नूर को उसकी बातों का बुरा नहीं लगा था, ना ही गुस्सा आया था, बल्कि वो अभी भी उसकी आंखों की तरफ देख रही थी, जो मैंने वो साफ कर चुका था। वो परेशान था, घबराया हुआ था और वो महसूस कर सकती थी। आप ठीक तो हैं? बड़ी नरमी के साथ कहा उसने। अगर नहीं भी हूं तो हो जाऊंगा, फैजान ने कहा, क्योंकि बचपन से वो खुद ही खुद को ठीक करता आया था। कोई नहीं था उसके आसपास जो उसे संभाल सकता। अगर वो खुद को ठीक नहीं करता तो आज वो जहां नहीं होता, टूट चुका होता। मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अपना ध्यान इधर उधर नहीं देता, मुझे अपना रास्ता पता है। और आप भी खुद को तवज्जो दें, क्लासेस अटेंड किया करें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, फैजान उसे ही समझाने लगा था। आपसे बात करना भी मुश्किल है, सर दर्द होने लगता है। नूर तो अच्छा नहीं लग रहा था कि वो सिर्फ पढ़ाई की बातें कर रहा था। वो इनडायरेक्ट समझ रहा था कि अरमान से हर चीज से दूर है, मगर नूर को ये सब बातें अभी समझ नहीं आ रही थीं। उसे समझाएंगे जब उसके साथ वो होगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। तब कोई नहीं करेगा उसके साथ, ना अरमान देगा ना रेहाना बेगम देगी। कुछ दिन की बात है, मैं जहां से चला जाऊंगा, फैजान ने कहा। उससे ऐसा कहने पर नूर ने उसकी तरफ देखा, उसे अच्छा नहीं लगा था। सादिया लाल साड़ी पहनकर खूब मेकअप करके तैयार हो चुकी थी। रेहाना बाहर से अंदर आता है। मैं कैसी लग रही हूं? सादिया मुस्कुराकर पूछा। वो इतना टाइम लगाकर तैयार हुई थी, रेहाना उसकी बात का जवाब देने की जगह पूछा, घर में इतना सन्नाटा क्यों है, कोई दिखाई नहीं दे रहा? ताई अम्मी अरमान के घर गई हैं, आती ही होगी। तभी रेहाना बेगम और नूर दोनों हॉल में एंटर करते हैं। आप परेशान लग रहे हैं, रेहान ने रेहाना बेगम से पूछा। हाँ थोड़ी सी तो हूँ, सुबैदागी सोच रही है कि अरमान किसी लड़की के साथ इंगेज है, बस इसीलिए चली गई थी, कह रही थी पता करो वो लड़की कौन है। नूर ने अपना सर झुका लिया था, क्योंकि इसके बारे में पूछताछ हो रही थी। वो लड़की वही थी, मगर नूर ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। नहीं कोई लड़की नहीं, रेहान बोला, मुझे अरमान का अच्छे से पता है। मगर साथ ही उसने नूर की तरफ देखा। अगर कोई लड़की नहीं है तो वो पायल किसके लिए लेकर आया है, किसी को तो गिफ्ट की होगी ना, रेहाना बेगम ने झुंझलाकर कहा। इसीलिए जुबैदा बेगम ने नूर को बुलाया था, इसके अरमान के साथ दोस्ती है तो शायद इसे पता चले कि वो लड़की कौन है। नूर भी झूठा सा मुस्कुराई थी। तो नूर ने क्या बताया, सादिया ने मुस्कुराकर तंज से पूछा था। उसका तंज किसी को समझ नहीं आया। मैंने साफ कह दिया, अब नूर को क्या पता होगा, रेहाना बेगम ने कहा। मैंने नूर को जानबूझकर उससे दूर रखा और उसे अपने साथ ले आए, रेहाना बेगम बोली। चलिए छोड़िए इस बात को, रेहान ने कहा। रेहान की बातों से साफ था कि वो इस मुद्दे पर और चर्चा नहीं करना चाहता था। चलो सादिया, वो ज्वेलरी ले आओ, रेहाना बेगम ने कहा। सादिया चुपचाप अंदर गई और ज्वेलरी का बॉक्स लेकर आई। रेहान और सादिया बाहर जाने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन जैसे ही सादिया ने बॉक्स खोला उसके हाथ रुक गए। अम्मी इसमें इयररिंग्स नहीं है, उसकी आवाज़ हल्की कांप गई। क्या? रेहाना बेगम चौंक गई। ये कैसे हो सकता है, इसमें पूरा सेट था, सादिया ने घबरा कर कहा। मुझे तो यही दिया गया था, इसमें नेकलेस है, रिंग है और ब्रेसलेट भी, मगर झुमके नहीं है। रेहान की भौहें से कुड़ गईं। ये बॉक्स तुम्हें किसने दिया था? माहिरा लेकर आई थी आपके कमरे से, मैंने तो इसे खोला भी नहीं था, सादिया ने धीरे से जवाब दिया। रेहान की आवाज़ सख्त हो गई। मतलब तुम कहना चाहती हो कि माहिरा ने? नहीं, सादिया ने तुरंत रोक दिया, मेरा वो मतलब नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि रास्ते में कहीं गिर गए हों। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। वो लोग अरमान के घर चले गए माहिरा से बात करने के लिए। पूरी बात सुनने के बाद माहिरा भड़क गई थी। आपके कहने का मतलब है कि मैंने ये किया है, मैंने ज्वेलरी चोरी की है, माहिरा ने पूरा गुस्सा दिखाया था। मेरे कहने का मतलब ये नहीं, रेहाना बेगम ने संभालते हुए कहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इयररिंग्स कहीं गिर गए हों। देखिए, माहिरा ने सख्त लहजे में कहा, मैंने पूरा सेट सादिया के कमरे में रखा था, मैं कोई लापरवाह नहीं हूँ सादिया की तरह, जो इतनी कीमती ज्वेलरी ऐसे ही बेड पर छोड़ दे। ये सुनकर सादिया का चेहरा तमतमा गया। इसे खुद पकड़नी चाहिए थी और अलमारी में रखती, माहिरा ने बात को और तीखा कर दिया। फिर उसने ताना मारा, उस दिन रेहान की जरूरी फाइल थी, इसने गेटकीपर को ऐसे ही पकड़ दी थी। जिस औरत से रेहान की चीजें नहीं संभलती, आपने उसे पूरा रेहान दे दिया। सादिया के दिल में जैसे आग लग गई। वहां बैठे सभी लोग हैरान थे, माहिरा इतनी आगे बढ़कर बातें करेगी, किसी ने सोचा नहीं था। जो बात तुमसे जितनी पूछी जाए उतनी ही बताओ, रेहाना बेगम की आवाज अब सख्त हो चुकी थी। जब तुमने ज्वेलरी बॉक्स बेड पर रखा था वो पूरा था या नहीं? और एक भी फालतू बात नहीं। इतने में शोर सुनकर फैजान भी ड्राइंग रूम में आ गया। क्या हुआ? उसे कुछ पता नहीं था। बॉक्स बंद था, पूरी ज्वेलरी उसी में थी, माहिरा ने साफ साफ कहा। आप चाहें तो फैजान से पूछ सकती हैं, जब मैं ज्वेलरी रख रही थी ये कमरे में आया था, मैं चली गई थी, ये वहीं पर था। कमरे का माहौल और भारी हो गया, अब सबकी नजरें फैजान पर थी। सच ये था, माहिरा ने ज्वेलरी सादिया के कमरे में ही इधर उधर की थी ताकि वो सादिया की पोजीशन सबके सामने डाउन कर सके, और अब वही खेल अपने असर दिखाने लगा था। जैसे ही माहिरा ने कहा कि उस वक्त फैजान कमरे में था, ये बात सुबैदा बेगम के दिमाग में बैठ गई। उनके चेहरे का रंग बदल गया। यही किया होगा, इसे ही 3 लाख रुपए चाहिए थे, पक्का चोरी इसी ने की है, वो मन ही मन सोच चुकी थी। जुबैदा, रिहाना बेगम ने सख्त आवाज में कहा, जब मैंने तुम्हें 3 लाख रुपए देने से मना कर दिया तो तुमने अपनी ही बहन के घर में चोरी कर ली। जुबैदा तुम क्या कह रही हो, रिहाना बेगम ने दोबारा पूछा। नहीं ताई अम्मी, मैंने कोई चोरी नहीं की। फैजान सीधा रिहाना बेगम की तरफ मुड़ा। तभी जुबैदा बेगम बोल पड़ी, इसने घर की ग्रॉसरी की खरीदारी में से पैसे चुरा कर 3 लाख रुपए जमा किए थे, पूछिए इससे। मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप, फैजान की आवाज अब तेज हो चुकी थी। 3 लाख रुपए आपने चुराए हैं, चोरी मैंने नहीं की, आपने मेरे पैसों की चोरी की है। अब फैजान बिल्कुल सीधा खड़ा था, उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वो पैसे उसके दिन रात की मेहनत के थे, जिनके लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। उसके इस तरह बोलने पर जुबैदा बेगम सन रह गई, और तभी अरमान ने गुस्से से अपनी आंखें फैजान पर गड़ा दी। ये क्या बोल रहा है, कमरे में बैठे हर शख्स के चेहरे पर हैरानी थी। माहिरा भी चौंक गई थी, उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। रिहाना बेगम और सादिया भी फैजान को देख रही थी, लेकिन कोई भी उसके हक में एक शब्द नहीं बोला। मेरे भाई पर यह इल्जाम क्यों लग रहा है, आखिरकार सादिया बोल पड़ी। अरमान अब खुद को रोक नहीं पा रहा। सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारे पास 3 लाख रुपए आए कहां से? कहीं से भी आए हों, फैजान ने सीधा जवाब दिया, लेकिन उनकी तरह किसी का हक मारकर इकट्ठा नहीं किए मैंने, उसका इशारा साफ था। और जहां तक ज्वेलरी की बात है, मैंने नहीं चुराई, फैजान ने बिना झिझक कहा। जरूर माहिरा नहीं चुराई होगी, मुझसे पहले वही वहां थी। बस ये सुनना था कि अरमान गुस्से में खड़ा हो गया। तुम मेरी फैमिली पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, उसकी आवाज गूंज उठी, पहले मेरी ना और अब मेरी बहन। अगले ही पल उसने फैजान का कॉलर पकड़ लिया।
कमरे का माहौल पूरी तरह भड़क चुका था।